देवियों शुद्धिजनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गीता के त्रयोदश अध्याय में 13 चैप्टर में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए अगले मंत्र की चर्चा करें, अगले श्लोक की। बोलिए मेरे साथ, असत्तेरनभिष्वंगः असत्तेरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व त्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु जी, ज्ञानी आदमी का जो समझदार है, जो एनलाइटेंड है, तो वाइज मैन है, उसकी क्या क्या सिम्टम्स है उसकी चर्चा कर रहे हैं। 20 अलग अलग सिम्टम कृष्ण बताते हैं। उनमें से पिछले बार हमने काफी सारी 4-5 रविवारों में चर्चा की है। आज की है कि असक्ति ही, नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु, अपनी पति या पत्नी, बच्चे, घर परिवार वगैरह के साथ नॉन आइडेंटिफिकेशन होना, नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कोई चीज, कोई रिजल्ट हमारे सामने आया, इट मे बी एग्रीएबल और डिसएग्रीएबल, वो हर परिस्थिति में मन की अवस्था, द स्टेट ऑफ माइंड शुड बी इवननेस। ये सारे लक्षण है ज्ञानी आदमी के, समझदार व्यक्ति के लक्षण है। उसमें पहला जो आज के विषय है, असक्ति ही, डिटैचमेंट होना। डिटैचमेंट हमारे साधारण भाषा में जिसको हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई साधु सन्यासी हो गया, घर परिवार छोड़ दिया, बाबा बन गया। ये वैराग्य नहीं है। आप छोड़ के कहां तक भागोगे? घर छोड़ोगे तो आश्रम बनाओगे, बच्चे छोड़ोगे तो शिष्य बनाओगे, कमाने का पैसा छोड़ोगे तो मांगने का पैसा अपनाओगे, तो क्या क्या छोड़ोगे? नींद नहीं छोड़ सकते हो, खाना नहीं छोड़ सकते हो, चलना नहीं छोड़ सकते हो, बैठना नहीं छोड़ सकते हो, भूख मारना नहीं छोड़ सकते हो, प्यास रोकना नहीं छोड़ सकते हो, तो क्या क्या छोड़ोगे? सिर्फ जो करने लायक काम है, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, उसको छोड़ोगे, और जो पाप होता है। इसलिए छोड़ने का नाम वैराग्य या डिटैचमेंट नहीं होता है। जब हम बात करते हैं डिटैच्ड की, वैरागी की, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई घर छोड़े, नौकरी छोड़े, कमाई छोड़े तभी होता है। डिटैचमेंट जस्ट इज ए स्टेट ऑफ माइंड है, इट्स नॉट स्टेट ऑफ योर फिजिक बॉडी। आप शरीर से क्या करते हो उससे ये नहीं डिसाइड होता है कि आप डिटैच्ड हो कि अटैच्ड हो। आप मेंटली क्या हो वो डिसाइड करता है। जनक राजा थे मिथिला के, और जब भी ऋषियों का गेट टूगेदर, बा सत्संग जिसको कहते हैं, होता था, जनक ऋषि जाते थे, महर्षि वशिष्ठ उसको प्रिजाइड करते थे, और जब जनक आते थे तो वशिष्ठ हमेशा उनको अपने साथ ऊपर बैठाते थे, बगल में बैठाते थे, सामने बैठाते थे। ऋषि मुनियों को लगता था, बाकी ऋषि मुनियों को, वशिष्ठ जी थोड़ा पार्शियलिटी कर रहे हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि ये राजा है, नेचुरली हम सबको पता है ये ह्यूमन बींग का नेचर है, वो पॉलिटिकल लीडर्स को गालियां देता है 24 घंटे, पर हर प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर को ही बुलाता है। कोई भी मंदिर बिना पॉलिटिकल लीडर आए पूरा नहीं होता है, भगवान आ जाए तो भी अधूरा है जब तक पॉलिटिकल लीडर को ना बुलाया जाए। पर उस पॉलिटिकल लीडर को हम साल भर गालियां देते रहते हैं, ये हमारा स्वभाव है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं एकेडमिक फील्ड में, वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, पर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन नहीं होता है जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर को बुलाया नहीं जाता हो। और वो पॉलिटिकल लीडर दसवीं फेल हो तो भी वो चांसलर के बगल में बैठेगा और चांसलर को गर्व लगता है, या जो भी एकेडमिक स्टाफ होते हैं उनको लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, जो राजा है वो पीछे से कितना भी बुराई करे उसको हमेशा आसपास रखना चाहता है। तो ऋषियों को लगता था कि शायद वशिष्ठ जी को यही बीमारी है कि भाई राजा है तो उसको ऊपर बैठाना चाहिए, भाई ऋषि मुनि सब नीचे बैठेंगे। वशिष्ठ को यह समझ में आया तो उसने कहा कि ये जो मिसपरसेप्शन है इसको दूर करना जरूरी है। तो एक दिन ऐसे ही सत्संग ऋषियों की चर्चा चल रही थी, अचानक आश्रमों से जंगल से एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आया और सभा भवन में एंट्री करके बोला कि ऋषियों के आश्रम में आग लग गया है। तो ज्यादातर ऋषि खड़े होकर भागने लगे, जो बैठे रहे उनका मन चंचल हुआ, बेचैन हुआ, इधर उधर देखने लगे क्या करें। उस दिन बात वहीं गई। इसी तरह अगले 2-3 महीने के बाद जनक के राजमहल से एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आया, बोला कि राजमहल में आग लगा है। जनक के मुंह में को जो एक्सप्रेशन था उसमें ना कोई बदलाव था, ना कोई एक्साइटमेंट था, ना कोई एंग्जाइटी थी, जैसा था वो उसी रूप में बैठे रहे, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वशिष्ठ ने अगले दिन आश्रमों में जाकर ऋषियों से पूछा कि आप लोग उस दिन जब आग लगने की बात हुई उस दिन क्यों भागे? बोले हम भागे नहीं, वो हमारा मन बेचैन हो गया। हम ऐसा नहीं कि हम कोई सोच समझ के करते हैं। अभी आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको पता चले कि आपके घर में कुछ अनहोनी हुई, वो जो कुछ होगा वो डिलिबरेटली नहीं होगा, वो इंस्टेंटली अपने आप आपसे होगा। आप घबराएंगे, आप पुलिस को फोन करेंगे, आप भागने लगेंगे, जो कुछ भी होगा आपसे वो कोई सोच समझ के नहीं, अपने आप होगा, क्योंकि उसी तरह का हमारा माइंडसेट है। तो ऋषियों ने कहा हमने थोड़े, वो तो हम भागे। बोले जनक के राजमहल में आग लगा, जनक को क्यों कुछ नहीं हुआ? यही फर्क है जनक में और आप में। जनक राजा है प्रोफेशनली, पर उसका अंदर तुमसे ज्यादा ऋषित्व से भरा हुआ है। वो तुमसे बड़ा ऋषि है, तुमसे बड़ा योगी है। तुम जंगल में रहते हो, आश्रम में रहते हो, घर परिवार छोड़ रखे हो, इसीलिए तुम्हें ये ईगो है कि तुम बड़ा त्यागी हो, बड़ा वैरागी हो, बहुत डिटैच्ड हो। तुम फिजिकली डिटैच्ड हो, तुम्हारा माइंड अभी भी अटैच्ड है। वो बड़े बड़े घर छोड़ दिया, पर ये टूटे फूटे पेड़ पौधों से बने हुए झोपड़ पट्टी में तुम्हारी अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। क्या बचाने निकल पड़े थे? 2-4 लंगोट और 1-2 लोटे। राजमहल में आग लगता तो अरबों की संपत्ति को बर्बाद होती, तब भी जनक को कोई एंग्जाइटी नहीं थी। यही है डिटैचमेंट। तो आप राजा हो या ऋषि हो, जंगल में रहते हो या महल में रहते हो, ये मैटर नहीं करता। आप ट्रिलियन डॉलर के बिजनेस करते हो या आप भीख मांग के गुजारा करते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उस सिचुएशन में आपका स्टेट ऑफ माइंड अटैच्ड है या डिटैच्ड है। अगर डिटैच्ड है तो आप सन्यासी हो, आप ज्ञानी हो। अगर नहीं है, आप अनपढ़ हो, आप नासमझ हो, आप नादान हो, आप स्टूपिड हो, स्टूपिड कॉमन मैन हो। तो क्या है डिटैचमेंट? अटैचमेंट तब पैदा होता है जब माइंड में आइडिया पोजीशन आता है, सेंस ऑफ ओनरशिप आता है। लोगों के पास जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो भी अटैच्ड होता है। मतलब एक होता है कि अपना घर होने पर भी उसको घर में कोई लगाव नहीं है, ही डजंट फील दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। और एक दूसरा आदमी है, वो किसी मंदिर का ट्रस्टी बना है तो भी लगता है दिस इज माई, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। बात समझ में आती है? तो मंदिर आपका थोड़ी है, आप ओनर थोड़ी है, वो तो पब्लिक है, वो ट्रस्ट है। पर आपका जो नहीं है उसमें भी आप अटैच्ड हो चुके हो, और जो आपका है बहुत सारे लोग उसमें भी अटैच्ड नहीं होते हैं। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल, इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट मैटर, इट्स अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। और जितने चीजों से आप अटैच्ड होते जाओगे, आपके दुखों के प्रॉब्लम के उतने ज्यादा ज्यादा कॉजेस आपके सामने रहेगा, एक्सक्यूजेस ज्यादा रहेंगे। लोग तो ऑफिस में अटैच्ड हो जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो मालिक नहीं है, वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलता है, अगर एक महीना ना जाए तो उनको नौकरी से भी निकाल देंगे। पर 8-10 साल एक कंपनी में, एक ऑफिस में काम कर गए, इतने अटैच्ड हो जाते हैं, 3 दिन घर में रुके तो उनको बेचैनी हो जाता है, ऑफिस नहीं गया, नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है, वो इतना इतना कमजोर मन है, वो कहीं भी जाए चिपक जाता है। और वो जो चिपकना है वही दुखों का कारण होता है। समझदार व्यक्ति इसको समझता है कि ऑफिस तो छोड़िए, घर तो छोड़िए, ये शरीर भी मेरी मर्जी से नहीं चलने वाला है, वो कब आया कब जाएगा पता ही नहीं चले, क्यों मैं अननेसेसरी कहीं चिपक जाऊं। ठीक है, जो ये जो कुछ मुझे यूज करना है मैं कर रहा हूं, मुझे तो एक दिन जाना ही जाना है, मेरे मरने के बाद भी ये घर रहेगा, ये जमीन रहेगी, ये सब कुछ रहेगा, मेरे आने से पहले भी था। तो जो स्टेट ऑफ ओनरशिप है, यही अटैचमेंट होता है। इट गिव्स राइज टू इंडिपेंडेंस एंड अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स फॉर डिराइविंग सम एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। फिर क्या होता है, अब आप खुश अपनी मर्जी से नहीं होते, आपकी खुशी और आपका दुख डिपेंड करता है। आप गुलाम हो गए हम, कि जो जिन चीजों से हम अटैच्ड हो वो डिसाइड करेंगे कि मैं आज खुश होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी बीमार है तो मैं दुखी हूं, मेरे बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं ला रहे तो मैं दुखी हूं, मेरे ऑफिस में आज ये प्रॉब्लम हो गया तो मैं दुखी हूं। मतलब मेरा दुख मेरे चाहने ना चाहने पर नहीं हो रहा है, वो कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है। अब जब दूसरा डिसाइड करे, आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप जिंदगी भर सब कुछ होने पर भी दुखी ही मिलेंगे। आपके पास सब कुछ होगा तो भी आप दुखी मिलते हैं, क्योंकि आपका सुख और दुख आपके द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर डिपेंड करते हैं। अटैचमेंट का यही रिजल्ट है कि आपके पास सब कुछ होने पर भी आप सुखी नहीं हो पाते हैं। नेचुरली ए पर्सन हाई इन अटैचमेंट बिकम्स ए विक्टिम ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस एंड देयर फुलफिलमेंट एंड सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स। आप अपने परिवार से अटैच्ड हुए तो नेचुरली आपके लाइफ को जितने दुख आते हैं, कभी अगर आप इसको डायरी में नोट करें कि क्यों आज आप परेशान, क्यों आप इस महीने के 30 दिन में 10 दिन आप दो दो घंटे दुखी रहे, आठ आठ घंटे दुखी रहे, 12 घंटे दुखी रहे, 5 दिन दुखी रहे, उसका रीजन ढूंढिए। रीजन आप कहीं भी नहीं हो, बहुत कम मामला ऐसे होगा कि आप दुखी इसीलिए है क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम है। आप दुखी इसीलिए है कि अननेसेसरीली आप किसी चीज में अटैच्ड है। आपकी बैकयार्ड में आपने कोई पौधा लगाया था, उसकी डाली टूट गई तो आप दुखी हैं। आप एक बिल्ली पाले थे, उसको बुखार हो गया तो आप दुखी हैं, है ना? आपका एक मनपसंद प्रोग्राम टीवी में आना था और उसी समय पावर कट हो गया, बा उसी समय बारिश के कारण वो झिलमिलाहट हो गया तो आप दुखी हैं, क्योंकि आप सुख उस टीवी सीरियल में ढूंढते हैं, उस प्लांट की डाली में ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें आप अटैच्ड हैं। अटैच्ड पर्सन और डिटैच्ड में इतना ही अंतर है कि दोनों के दोनों ही प्लांट लगाते हैं, दोनों ही टीवी देखते हैं, दोनों का फैमिली होता है, दोनों के बैकयार्ड होता है, दोनों का बिजनेस होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कि डिटैच्ड आदमी कम धनी होता है, अटैच्ड ज्यादा धनी होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि डिटैच्ड के बैकयार्ड में सूखा पड़ा रहता है क्योंकि डिटैच्ड कुछ करता धरता नहीं है और अटैच्ड वाला करता, ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब डिटैच्ड आदमी वैरागी व्यक्ति करता है, जो भी रिजल्ट है वो उसको उसी रूप से लेता है। वो बाहरी दुनिया को अपने अंदर डिसाइड करने के लिए अलाउ नहीं करता है, वो किसी पेड़ को ये परमिशन नहीं देता है कि वो डिसाइड करे कि मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं। वो अपने पति या पत्नी को अलाउ नहीं करता है कि मैं सुखी या दुखी रहूं तो वो डिसाइड करे। वो अपने बच्चों को भी अधिकार नहीं देता है कि मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं, इसका डिसाइड वो करें। वो अपने टीवी को ये परमिशन नहीं देता कि वो डिसाइड करे कि मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं। मैं सुखी या दुखी मेरे अपने इच्छा से बनूंगा, यही फर्क है। जब आप डिटैच्ड होते हैं, जब आसक्ति भाव पैदा करते हैं, तो आपके अंदर वो इंटरनल फ्रीडम आता है। वो जो फ्रीडम हम अननोइंगली खोते जाते हैं जो अटैच्ड है। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आप दुनिया में, बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि अगर हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, नौकरी बाकरी है, और आप कहते हो वा गीता में लिखा है वा उसमें लिखा है डिटैच्ड रहो, फिर हम कैसे बच्चों को कैसे पालेंगे अगर उनके साथ हमारा अटैचमेंट ना हो? प्यार कैसे करेंगे? प्यार के साथ अटैचमेंट का कोई लेन देन नहीं है सज्जनों देवियों। बच्चों के प्रति आपकी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, इट्स योर ड्यूटी टू लव योर चिल्ड्रेन। कभी कभी आप प्यार नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिस के काम में व दुनियादारी के कारण आपको बहुत टेंशन है, ये गलत है। आप किसी भी परिस्थिति में रहें, बच्चों को आपसे प्यार पाना उनका राइट है एंड इट्स योर ड्यूटी। आपको सिर्फ उनको खिलाना पिलाना मां बाप की ड्यूटी नहीं होती है, उनको प्यार देना भी हमारी ड्यूटी है। इसके लिए अटैचमेंट की जरूरी नहीं है। आप डिटैच्ड होकर भी किसी भी चीज से प्यार कर सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं। तो जितना ज्यादा अंदर हम वो स्टेट ऑफ डिटैचमेंट पैदा करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उतना ज्यादा अंदर से हम फ्री होते हैं, हमारी इंटरनल इंडिपेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ती है। फिर मैं खुश रहूं या दुखी रहूं, इसका डिसीशन मेरे अंदर से होता है, ना कि बाहर की दुनिया से। इट फ्रीज यू फ्रॉम द फेटर्स विच बाइंड यू टू द ऑर्डिनरी प्लेन ऑफ अवेयरनेसेस। A man who is detached may enjoy the pleasure of life, acquire wealth and status, raise a family that he loves, control a vast business, or even an empire. जैसे मैंने अभी कहा, अतः आप सन्यासी हैं या आम आदमी हैं, आप detached या attached हैं, ये decide नहीं होगा कि आपके पास empire है या नहीं है, आपके पास परिवार है या नहीं है, आपके पास धन संपत्ति है या नहीं है, ये decide आप कौन से कपड़े पहनते हैं, ये decide नहीं करता, ये करता है कि आपके पास जो कुछ है उसके साथ आपका mental relationship क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप अटैच्ड घूमते रहेंगे, आप दुखी मिलेंगे, आपके पास सब कुछ है तो भी आप खुश रह सकते हैं जनक के तरह, इसलिए जनक को विदेह कहा जाता था। However, he is never dependent on them. सब कुछ होने पर भी वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, आज है बहुत बड़ा अंपायर है, कल कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो व्यक्ति उतना ही शांत, इतना ही सुखी रहेगा। वो सबको एंजॉय करता है बट एज ए मास्टर नॉट एज ए स्लेव। जब मेरे बच्चे मेरे सुख दुख का डिसीजन करते हैं तो मैं उनका मास्टर नहीं उनका स्लेव बनता हूं। जब मेरा कान ये डिसाइड करता है कि मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं, क्योंकि अभी मेरा कान कुछ अच्छा सुनना चाहता है, कुछ ऐसा सुनना चाहता है और मैं जो सुनना चाहता है वो मैं कर नहीं पा रहा हूं तो मैं दुखी हूं, तो मैं अपने कान का गुलाम हूं, आंखों का गुलाम हूं, मुंह का गुलाम हूं। मेरा जीभ चाहता है कि मैं पर्टिकुलर चीज अभी खाऊं, वो नहीं मिला तो मैं फेड अप हूं, मेरा मूड खराब है, तो वो खाना वो जीव डिसाइड करता है कि मैं सुखी रहूं ना रहूं। डिटैच्ड व्यक्ति ये अपने सेंसेस को और ये सारी दुनिया को अपने स्लेव बनाता है, वो खुद डिसीजन लेता है, और अटैच्ड व्यक्ति दूसरों से डिसाइडेड होता है, उसका खुद का कुछ चलता नहीं है, इसीलिए वो लाइफ में जिंदगी भर दुखी मिलता है, क्योंकि उसका दुख और सुख का डिसीजन उसके हाथ में नहीं होता है। जैसे मैंने अभी क्लियर किया, वैराग्य का अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कदापि इट्स निगेशन ऑफ लव, क्या आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। उल्टा डिटैच्ड व्यक्ति का प्यार ज्यादा निश्चल होता है, ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है ना। अटैचमेंट क्रिएट्स एक्सपेक्टेशंस। जब आप अटैच्ड होते हैं फिर आपका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता है कि मैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, और 4 बजे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मुझे बिना पूछे मुझे चाय दे जाए, ऑफिस से आ गया तो वो बिना पूछे समझ जाए कि मैं थका हूं या नहीं हूं, वो उसी तरह मुझे ट्रीट करे, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। क्यों भाई, तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो, क्यों, क्यों मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये जो मेरी मेरापन है वो एक्सपेक्टेशन को जन्म देता है, और नेचुरली एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो सामने वाले के हाथ में है, और सामने वाला होता है वो आपका कतई नहीं होता है, वो अपना होता है। A person who is really detached loves all without involvement and expectation. The love of a detached person creates a supremacy of benevolence in his character. ध्यान रखिएगा, जब आप detached होकर even अगर हम अपने बच्चों से भी प्यार करने लगें, बच्चों की जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी अगर attached होकर करें। आपको पता है होगा, पहले आज भी है बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हमारे गांव के, शहर के, खास करके भारत में, मुझे नहीं, पहले जमाने में ये ज्यादा होता था, मां बाप उनको बाहर नहीं छोड़ते थे, क्यों, मेरा अकेला बेटा है, अकेली बेटी है, मेरे से दूर रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगा। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, ऐसे हजारों लाखों बच्चे जो टैलेंटेड है, जिनका टैलेंट बाहर जाने पर बढ़ सकता था, वो इसीलिए इंजीनियर डॉक्टर बन नहीं पाए, वो साइंटिस्ट बन नहीं पाए, वो किसी बड़ा काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, और माँ बाप इतने अटैच्ड हैं, प्यार है जिसको वो प्यार का नाम देते हैं, कि उसके बिना वो रह नहीं सकते, इसीलिए उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। वो जो अटैच्ड प्यार है वो अपने बच्चों के प्रति मंगलकारी तो नहीं हुआ ना, इट्स नॉट बेनेवोलेंट टू देम। जब आप डिटैच्ड हो जाते तो आपका प्यार ज्यादा शुद्ध होता है, ज्यादा भला करने वाला होता है, ज्यादा वेलफेयर वाला होता है, जिसके प्रति भी आप करते हैं, इवन हमारे बच्चे या स्पाउस के प्रति भी, वो ज्यादा खुला महसूस करते हैं, ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, जब आपके प्यार में अटैचमेंट कम हो। यही तो झगड़ा है टीनेज के बच्चों में और माँ बाप में। माँ बाप हर बात पर उनको उनको गाइड करना चाहते हैं, और बच्चे चाहते हैं कि आप प्यार करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना मत चिपक जाओ कि हमारे लाइफ में और किसी को आने नहीं दो। यही तो झगड़ा है। और थोड़ा सा आप डिटैचमेंट दिखाने लगो, वो बच्चे आपसे खुश रहते हैं। ये रियल लाइफ में भी हर कोई चाहता है इतना, पर क्या करें, कुछ लोगों की मजबूरी है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि अटैचमेंट के कारण ही प्यार होता है और डिटैचमेंट से प्यार कम होता है। डिटैचमेंट से प्यार ज्यादा सॉलिड, ज्यादा प्योर होता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो उसको समझता है, इसलिए उसका लाइफ फुल ऑफ डिटैचमेंट होता है। अगला वाक्य बना, अनभिश्वंग पुत्र दार गृहादिशु, नन आइडेंटिफिकेशन विद चिल्ड्रेन, स्पाउस, होम एक्सेट्रा। अभी जैसे हमने चर्चा की, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा देश है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उससे दूर रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं आया, जो कष्ट मैंने सहा, जो दुख मैंने सहा, या जो सुख सहा, वो कोई उसको शेयर नहीं कर पाता है, चाहकर भी नहीं कर सकता। वो मां कुछ भी कोशिश करे, उसका पति एक इंच भी उसके शेयर नहीं कर सकता। वो प्रेगनेंसी में उसका जो दर्द है, बच्चा पैदा करने में जो दर्द है, कोई दुनिया का मां बाप पति बच्चे उसको शेयर, आपको ही वो भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं मरूंगा, दुनिया की कितने भी मेरे रिश्तेदार अच्छे हो, कितना भी मुझे प्यार करते हो, कितने भी सेवा करते हो, मुझे कोई नहीं बचा सकता। जब मैं बीमारी में तड़पूंगा, आप कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले, वो मैं ही तड़पूंगा। तो जो कुछ मेरे साथ होगा वो मेरे ही साथ होगा। मरने के बाद तो कौन पत्नी है, कौन बच्चा है, कौन सा घर है, कौन सा अमेरिका है, कौन सा इंडिया है, कौन सा कल्चर है, कौन सा क्या है। पीछे आप लड़ते रहो, गांधी के नाम पर, इसके नाम पर, इसके नाम पर स्टैच्यू लगेगा, कि इसके नाम पर रोड बनेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो मरने के बाद कुत्ता बना, बिल्ली बना, इंसान बना, पेड़ बना, क्या बना, वो अपने लाइफ में जी रहा है। आपको क्या पता पिछले जन्म में क्या थे, आपके नाम पर क्या पता कि आप ही गांधी थे और आपके नाम पर लड़ाइयां हो रही है, आप ही जीसस थे, आपके ही नाम पर लड़ाइयां हो रही है, आप तो अपने लाइफ में लड़ रहे हो। ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप जन्म लेते हैं तो ईश्वर ने यह सिस्टम बनाया है कि आप एक मां से पैदा होंगे, आपका मां बाप आपको केयर करेंगे, आप बड़े होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। अब एंजॉय करो इसको, इस लाइफ को एंजॉय करो। पर जब आपकी आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ जाती है तो वो बेवकूफी होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इवन घर में आपको बुखार होता है, वो बुखार के कारण आपका जीभ कड़वा होता है, खाना कुछ भी बने कड़वापन तो आपको ही भोगना पड़ता है ना। आफ्टर ऑल जो भोगना है वो आपको ही भोगना है। आप शेयर कर सकते हैं एक लिमिटेशन तक, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति, तड़पता हुआ व्यक्ति, कितने भी रिश्तेदार बंधु मित्र आए, सहानुभूति बताएं, कुछ भी करें, उसका दर्द तो कम नहीं होगा ना। आप कहेंगे थोड़ी बहुत उसको कंसोलेशन मिलेगा, ओके, आप अपने आप को समझाने के लिए बोल सकते हैं, उसको भी ठीक है, कंसोलेशन मिलता है। आफ्टर ऑल उसका पेन तो उसका अपना ही है। वो तो अगर डॉक्टर भी जो अनजान है, जिसके साथ कोई लेन देन नहीं, वो नर्स है, कोई वॉलेंटियरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वॉलेंटियर भी आ जाए, वो भी प्यार से बोले, तो भी कंसोलेशन मिलता है। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जब भी कभी लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी, या आजकल तो बात बात पर कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, क्या क्या बीमारियां आने लग जाती हैं, दिखने लग जाती हैं, तब कभी दिमाग में ये बात आती है, कि लाइफ में कौन किसका है जिसके लिए हम इतने जोर से लड़ते हैं, मरते हैं। तो जितना कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो, उतना जीवन ज्यादा शुद्ध, पवित्र और आनंदमय होता है। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, उतना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होगा, चिपका हुआ मिलेंगे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश। आपके बाद भी ये रहेगा, आपके पहले भी था, आप नहीं होते और कोई होता, और किसी रूप में होता, दुनिया चलती है। समझदार व्यक्ति किसी भी चीज के साथ कितना भी नियरेस्ट हो, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की दूर रहता है। अगला है, नित्यम च समचित तत्त्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट, अच्छा या बुरा जो भी मिले, चाहे एग्रीएबल और नॉन एग्रीएबल। इष्ट का मतलब होता है जो मैंने चाहा, डिजायर्ड। दो तरह की चीजें आपको मिलती है जीवन में, जो भी आप काम करते हैं, या तो वो मिलता है जो आप चाहते हैं, या वो मिलता है जो नहीं चाहते हैं। जो चाहते हैं वो मिल जाए आपको खुशी होती है, जो आपने नहीं चाहा वो मिल जाए आप दुखी होती हैं, उसको आप अनिष्ट कहते हैं। आपको बीमारी किसी को भी नहीं चाहिए, बीमारी आ जाए तो हम दुखी हैं। अच्छे लोग जिनको हम पसंद करते हैं वो हमारे घर आए, हमें अच्छा लगता है, खुश होते हैं। जिनको हम पसंद नहीं करते हैं वो हमारे घर क्या हमारे पड़ोस में भी दिख जाए, हमें दुख होता है। पर ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में, वो डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो, हर परिस्थिति में उसका माइंड इवननेस में भरा रहता है, एक जैसा बना रहता है, बदलता नहीं है। ये आसान नहीं है एक जैसे रहना, क्योंकि अच्छा लगना या बुरा लगना, किसी चीज को देख करके खुश होना, किसी चीज को देख करके दुख होना, ये हम नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। ये हम डेलिबरेटली नहीं करते, ये हमसे होता है। अब कोई जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा कोई बंधुजन है, रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है, उसको मैं देखता हूं, बात करता हूं, खुशी आती है। मैं कोई कल्टीवेट नहीं करता हूं, मैं कोई क्रिएट नहीं करता हूं। जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, वो मेरे से मिलने पर, बात करने पर मुझे बुरा लगता है, ऐसा मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये मेरे से होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, आप पूछेंगे। समचित तत्व तो होता नहीं है, इवननेस तो नहीं आ पाता है। वो होता है तो होने दें, अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें, लेट इट बी, उसको होने दें। पर जब वो होता है, वो हमारे कॉन्शसनेस के थ्रू नहीं होता है, वो उसके प्रति हमारा अवेयरनेस नहीं होता है। जब मैं गुस्सा कर जाता हूं, तब मुझे पता लगता है वो मुझे गुस्सा आया। जब मुझे बुरा लगा, बुरा तो लगा, मैंने थोड़ा ही कल्टीवेट किया, बुरा लगने के बाद पता लगता है कि मुझे बुरा लगा। पर अगर वो चीज विथ अवेयरनेस आए, जागरूकता के साथ आए तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है। एक स्टोरी हमने पढ़ी थी डेल कार्नेगी, तो उन्होंने अपने मेमोरियल में संस्मरण में एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। एक बार वो अमेरिका के किसी रेडियो में अब्राहम लिंकन के बर्थडे या किसी समय पर उन्होंने लिंकन पर एक लेक्चर दिया था, एक कुछ टॉक बोला था, और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो थोड़ा फैक्चुअली गलत था, लिंकन के बारे में हिस्टोरिकली कुछ गलत था। तो उस टॉक को सुनने के बाद एक लेडी ने, एक महिला ने उनको एक चिट्ठी लिखा बड़ी कड़वी भाषा में, उसको बुरा लगा। उसने लिखा, अगर आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको लिंकन के बारे पता नहीं, हाउ डेयर यू टू से अबाउट हिम समथिंग, आपको किसने कहा कि उसके बारे बोलने के लिए, स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस, ऐसे बड़ी बड़ी कड़वी भाषा में उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा। नेचुरली ऐसी कड़वी चिट्ठी आपको मिले तो पहला आप भी तो लिखना शुरू करेंगे रिप्लाई देना, तो उन्होंने भी सोचा मैं भी इसको रिप्लाई करूं। तो रिप्लाई करने को चिट्ठी लिखने जा रहे थे, पत्नी ने खाना खाने के लिए बुलाया या कुछ भी हुआ, तो उस समय वो लिख नहीं पाए और वो भूल गए, सोचा चलो कल लिख दूंगा। फिर अगले दिन जब आया कि चिट्ठी लिखूं, तो चिट्ठी लिखने बैठे, अब चिट्ठी का जैसा उधर से जवाब आता है उसी तरह का जवाब इधर से भी जाता है, उसी भाव के साथ, गाली से आया तो गाली से जवाब जाता है। अब किसी कारण लिखते लिखते आज की जगह कल, कल के जगह कल, वो जो चिट्ठी इन्होंने दो चार लाइन लिखते थे फिर वो रह जाता था, अगले दिन उसको फाड़ के भी दोबारा लिखते थे, अब अगले दिन जो चिट्ठी लिखते थे वो दो चार लाइन की भाषा थोड़ा और सॉफ्टवेयर होता था। किसी तरह लेट हो गया, एक हफ्ते के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी में पूरी तरह कोमल शब्दों के साथ, बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड के साथ, विथ रेस्पेक्ट, और बार बार माफी मांगते हुए लिखा, और ये भी लिखा कि आप जैसे व्यक्ति के कारण ही दुनिया में बा इसमें होता है, और मैं आशा करता हूं आप इस तरह मेरी गलतियां दिखाते रहें। पर पहली बार वो जो चिट्ठी लिखने जा रहे थे, चिट्ठी पढ़ने के बाद उस समय ये नहीं था, वो था कि तुम्हारे जैसे स्टूपिड व्यक्ति को क्या हक है मेरे जैसे लर्नड आदमी पर छोटी सी बात पर आरोप करने की, तुम तो वो हो। वो सैकड़ों गालियों का जवाब गालियों में था। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भारत में कहा करते हैं, जब भी गुस्सा आए तो 100 तक काउंट करो, किसी को जवाब देने के लिए। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो उसको थप्पड़ मारो, कोई बात नहीं, पर 100 गिनने के बाद मारो, फिर मार ही नहीं सकते हो। जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो वही होता है, जो आता है उसके बदले में वही जाता है। जब आप टाइम टेकिंग करते हो फिर आपका दिमाग चलता है, आपका मन, आप ओरिजिनल फॉर्म में आते हो, फिर आप शांत हो जाते। जीवन में बहुत सारे चीजों का समाधान टाइम लेने पर अपने आप होता है। इंस्टेंट रिएक्शन कभी कभी हमें जानवर जैसा बना देता है। इसलिए देवियों सज्जनों, प्रिय और अप्रिय चीज में समता भाव, गीता में कृष्ण कहते हैं, दूसरे चैप्टर में, तीसरे में, छठे में, बहुत सारे जगह। और जरा ध्यान दीजिएगा वो किस किस कंटेक्स्ट में कहते हैं। योगी का क्या डेफिनेशन है? सेम सिम्टम है। भक्त का क्या सिम्टम है? ज्ञानी का क्या सिम्टम है? अगर आप गीता को ठीक से पढ़ें, ये कृष्ण की बड़ी कमाल थ्योरी है। वो ज्ञानी हो, भक्त हो, योगी हो, जब उसका सिम्टम बताते हैं तो एक ही होता है, क्या? सुखे दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। सुख में जो बहुत ज्यादा उछलता नहीं है, दुख में बहुत ज्यादा टूटता नहीं है, अच्छा और बुरा, हानि और लाभ में एक जैसा बना रहता है, वही योगी है। अलग चैप्टर में वही ज्ञानी है, अलग चैप्टर में वही भक्त है, किसी दूसरे चैप्टर में वही कर्मयोगी है। ओवरऑल जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप फिजिकली आप ऊपर से क्या रास्ता अपनाते हैं वो मैटर नहीं करता, अंदर से एक ही जैसा स्वभाव होना चाहिए, एक ही जैसा स्टेट होना चाहिए कि आप हर परिस्थिति में इवननेस में रहते हैं, और तब आपके आपके अंदर वो जो सुख या शांति को तलाश करते हैं आपको मिलता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। इसीलिए नहीं है कि ये ज्ञानी का लक्षण क्यों है, समझदार व्यक्ति का लक्षण क्यों है, इसीलिए नहीं कि इसके द्वारा आप किसी को खुश करते हैं, इसीलिए नहीं कि इससे ईश्वर प्राप्ति आसान होती है, इसीलिए नहीं कि समाज में लाइफ आसान होता है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं सुन रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उससे मैं बेहतर बनता हूं, मैं इंटरनली फ्री होता हूं, मैं अंदर से राजा बनता हूं, खुद का राजा बनता हूं, खुद का ओनर बनता हूं, जो कुछ भी ये बताया जाता है। जब हर परिस्थिति में आप एक जैसा रहते हैं वो आपको ज्यादा लाइफ को आसान बनाता है। इसी के साथ आज के इस विचारों को यहीं रखते हैं, अगली बार फिर आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।